ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य तो श्रीमद् भागवत पठन स्कंद 4 अध्याय 18 और सॉरी अध्याय 30 और श्लोक संख्या 18 आप लोग सभी दोहराएंगे। अथ मय्यन् पायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशया उपयास्यथ मदधाम। निर्विद्या निरया तदह दतः निर्विद्या निरया दतः अथ मय्यन् पायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशया उपयास्यथ मद्धाम निर्विद्या निरया दतः अथ मय्यन् पायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशया उपयास्यतः मद्धाम निर्विद्या निरया दतः। आप लोग दोहराएंगे। मद्धाम भक्त्या पक्वगुणाशया माता है शब्दार्थ अतः मई मुझ में अनपायन्या अविचल भक्त्या भक्ति से पक्व गुणा भौतिक कलमशों से रहित आशया मन उपयास्यथ प्राप्त करोगे मत धाम मेरा धाम निर्विद्य विरक्त होकर निर्यात संसार से अतः इस प्रकार। तो अनुवाद और तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति सुदृढ़ भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथा कथित स्वर्गलोक तथा नरकलोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? तो प्रचेताओं से बोल रहे हैं, हमसे नहीं बोल रहे। तात्पर्य भगवत कृपा से प्रचेताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। यद्यपि वे भौतिक सुखोपभोग के लिए लाखों वर्ष जीवित रहे किंतु तो भी वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहे। इस प्रकार लीन रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो गए। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। भौतिकतावादी एक जन्म में धन धरती मित्र समाज मित्रता प्यार आदि अर्जित करता है और इस शरीर के विनष्ट होने पर वह स्वर्ग लोक का भी भोग चाहता है। किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लगा रहे यदि मनुष्य भक्ति में लगा रहता है तो वह समस्त भौतिक सुख या दुख से विरक्त हो जाता है। इस संसार में जो लोग स्वर्ग लोक भेजे जाते हैं समस्त सुखोपभोग करते कहे जाते हैं, किंतु जो नरक लोक को भी जाते हैं उन्हें नारकीय अवस्थाएं बितानी होती हैं, किंतु भक्त स्वर्ग अथवा नरक इन दोनों की अवस्थाओं से परे हैं। भगवत गीता के अनुसार 14:26 भक्ति की स्थिति इस प्रकार है। माचयोभ्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद तक पहुंचता है। भक्त सदैव ब्रह्म पद पर स्थित रहता है, उसे भौतिक सुख या दुख से कुछ सरोकार नहीं रहता। जब वह भक्ति में दृढ़ रहता है और समस्त भौतिक आसक्ति से रहित एवं प्रकृति के तीन गुणों से अदूषित रहता है तो वह घर को अर्थात भगवान के धाम वापिस जाने में सक्षम होता है। यद्यपि विशेष आशीर्वाद के कारण प्रचेतागण लाखों वर्ष तक भौतिक सुखों का भोग करते रहे किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं हुए। अतः भौतिक सुखोपभोग के बाद वे वैकुंठ लोक प्राप्त करके और भगवान के पास चले गए। पक्व गुणाशया शब्द का विशिष्ट महत्व है क्योंकि इसका अर्थ है कि भक्ति द्वारा मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है। जब तक मनुष्य इन गुणों के प्रभाव में रहता है वह भगवान के पास नहीं लौट सकता। इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि भौतिक जगत के सारे लोक ब्रह्म लोक से लेकर नरक लोक तक भक्त के लिए अन्न अनुपयुक्त स्थान है। पदम पदम यत विपदा तेसा, जहाँ पग पर विपदा हो, संकट हो, वह निश्चय ही सुखमय स्थान नहीं है। अतः भगवत गीता में 8:16 में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भौतिक जगत में सबसे ऊपरी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक के सभी लोक क्लेश पूर्ण स्थान हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अतः यदि कोई इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लेता है तो भी कोई लाभ नहीं, किंतु यदि कोई किसी प्रकार से भगवान के धाम को जा सके तो वह फिर इस संसार में कभी नहीं लौटता। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जन सलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मयी श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरुदीनतारणं। भूतये रमहद्वे इमां पुरा विभो निर्मायसे ते यदमुंश पुरुष भुंते गुणान षोडशषोडशात्मकं स्वलंकर शिष्ट भगवान वचांसि मे स्वलंकर शिष्ट भगवान वचांसि मे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का श्रीमद् भागवतम की प्रातःकालीन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है और इस अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो ये कार्यकलाप है, किसके कार्यकलाप है? प्रचेताओं के कार्यकलाप है। तो प्रचेता का मतलब होता है प्रकृष्ट चेता, प्र प्लस चेता। प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से और चेता बोलते हैं चेत को, चेतना को या मन को। तो जिसके जिसका मन या जिसका चित्त प्रकृष्ट रूपेण है, क्या ना, प्रचेता प्रकृष्ट रूपेण धर्म स्नाता सह प्रचेता। अर्थात जिनका मन प्रकृष्ट रूप से धर्म स्नाता, धर्म स्नाता का मतलब होता है जो धर्म में ही सराबोर रहता हो, धर्म में ही लीन रहना। तो जिसका मन धर्म में लगा रहता है वो प्रचेता है। बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए जो प्रचेता हैं शुरू से ही उनकी बुद्धि धर्म के प्रति आकर्षित थी और जिनकी बुद्धि धर्म के प्रति आकर्षित होती है, जो धर्म में लगे रहते हैं, तो भगवान की प्रतिज्ञा है धर्मो रक्षति रक्षतः। अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म का आचरण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, अर्थात भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि योगा क्षेम बहामी अहम, अहम उस भक्त का क्या करता हूं जो धर्म के पथ पर चल रहा है, उसका मैं योग क्षेम बहन करता हूं। तो चूंकि प्रचेता गण इनके कुछ कामना थी, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी, आपकी कोई कामना नहीं है या सर्व कामो वा या मोक्ष काम, ये सारे के सारे उदार थी है, उदार बुद्धि वाले कहलाते हैं, उत्कृष्ट बुद्धि वाले कहलाते हैं। कौन से? तीव्रेण भक्ति योगेन, जो भगवान के भजन के द्वारा भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो है विशेष बात है कि कोई कामना, कोई संसार में कामना तो सबके पास है, बिना कामना के तो कोई जी नहीं सकता। अब फर्क इतना है, किसी की इस जगत की कामना है, किसी की इसके जगत की परे की कामना है, स्वर्ग लोक की हो सकती है, किसी के जो है जो दो तीनों लोकों से परे उसकी कामना हो सकती है, भगवत प्राप्ति की कामना हो सकती है, लेकिन कामना तो सबके पास में है, कोई भी बिना कामना के नहीं है। तो इसलिए प्रचेता भी कामना युक्त हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको आदेश दिया था, है? क्या नाम है, पिता आदिष्ठा प्रजा सर्गे, पिताजी ने उनको आदेश दिया था कि तुम क्या को प्रजा की सृष्टि करो। तो इसलिए प्रचेता जो है
सृष्टि में लगने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है भगवान की भक्ति में लगे पहले से।
तो इसलिए जब भगवान की भक्ति में लगे
तो भगवान की जो प्रतिज्ञा थी कि जो मेरा भजन कर रहा है उसको मैं क्या है, उसकी मैं हर इच्छा को पूरा करता हूं। अब इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान की कृपा भी उनकी इच्छाओं के अनुसार उनके ऊपर हुआ करती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, अहम तान तथैव भजामि, ये यथा माम प्रपद्यते, माम ये यथा प्रपद्यन्ते। तो जो जिस भाव को लेकर के मेरा भजन करता है मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूं। तो भगवान की कृपा किसी को दे करके होती है, किसी से लेकर के होती है, किसी को मार करके होती है, है कि नहीं, और किसी को दूसरे के द्वारा मरवा करके होती है, है कि नहीं। तो भगवान जो है किसी को जो है लेकर के करते हैं, उससे सब छीन लेते हैं। यस्या अहम अनुग्रहणामि हरस्य तद्धनम सनई सनई ततं अदने त्यजति यस्य स्वजना दुख दुखितः। तो भगवान की ये भी कृपा है कि उसको इतना रोड पे ला करके खड़ा कर देते हैं कि तस्य स्वजनम त्यजति अधनम, उसको अधन जान करके निर्धन समझ करके उसके जो है घर वाले भी उसको क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो बोलो हरे कृष्णा, और नहीं करते हैं तो मत बोलो। तो भगवान क्या करते हैं, उसका जो है धन हड़प लेते हैं, क्योंकि माम अनविद्धात, मतलब कभी कभी वो मेरा भी अपराध कर देता है धन के मद में, और कभी कभी अन्यों का भी अपराध करता है। जैसे बलि महाराज से भगवान ने क्या किया, ले लिए थे सब धन, ले लिया था है? तीन पग भगाना, तीन पग मारा, बोला तीन पग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बलि भी प्रसन्न हो गया, चलो कोई बात नहीं, तीन पग तो आप बड़े बड़े पगों से नाप लो। कुछ मांगने के लिए कुछ हमेशा बुद्धि का प्रयोग तो करना ही होता है। मांगने के लिए ऐसी बात करो कि उसके दिमाग में बैठे कि कब छोटा मांग रहा है, लेकिन उसका अर्थ बाद में बहुत बड़ा निकले। पुरुषोत्तम, तुम्हारी सेवा लाइफ मेंबर की, इसलिए सुनो, है कि नहीं, उसके सामने इस प्रकार करो, अरे तो कोई बात नहीं, ठीक है महाराज, ये तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जो ठीक से उसको समझाने बैठे तो लिस्ट फिर आ रहा, धीरे धीरे खोलो, इतनी जल्दी नहीं, उसका हृदय भी टटोलते रहो कहां तक धक धक नहीं होता है। तो वहां तक आप लिस्ट खोलो बस उसके। तो भगवान ने जो है तीन पग मांगा, तीन पग, और वो भी अपने पैर से, लेकिन तीन पग में ही त्रिलोकी को नाप दिया, दो पग में ही त्रिलोकी को नाप दिया, और अंत में जब तीसरा पैर रखने के लिए नहीं हुआ तो भगवान ने क्या किया, बलि से पूछा कहां है अब तुम्हारे पास, दो पग जमीन तुम्हारी थी सब नप गई, तुम तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, अब तीसरा पग कहां रखूं। तो चूंकि बलि भक्त था, देखो कृपा है भगवान की, भक्ति के ऊपर कुछ विचित्र रूप से कृपाएं होती हैं। हालांकि भगवान इनडायरेक्ट रूप से बलि से ले रहे हैं, लेकिन बलि को वो दे रहे हैं जो जो है से ब्रह्मा लक्ष्मी तक जिस चीज को प्राप्त नहीं की, वो बलि को दे रहे हैं। बलि ने क्या कहा, प्रभु तीसरा पैर आप बोलते हैं रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ये बताओ दानी बड़ा है या दान बड़ा है। भगवान ने कहा भाई दानी बड़ा है, दानी दानी के हाथ में दान रहता है, ठीक है, तो मैं दानी हूं इसलिए मैं बड़ा हूं, इसलिए आप बोलते तीसरे पग रखने की जगह नहीं है, आप क्या करो मेरे सर पर रखो। तो भगवान ने वो चरण कमाल, जो चरण कमाल के लिए ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र वरुण यहां तक लक्ष्मी जी तरसती रहती हैं, वो चरण कमल भगवान ने कहां रख दिया, बलि के जो है सर पर रख दिया था। तो भगवान का चरण, भगवान के चरण जिसके सर पर रख जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो इसलिए यहां पर जो है कृपा किए भगवान, कैसे, बलि से लेकर के किए। हरिदास ठाकुर के ऊपर कृपा कैसे किए, उसको 22 बाजारों मरवा करके किए, सारे संसार को यह दिखा दिया कि मेरा भक्त कितने भी दुखों में, कितनी भी विकट परिस्थितियों में क्यों ना डाला जाए, लेकिन फिर भी लक्ष्य से विचलित नहीं होता है, उसका लक्ष्य कभी भी नहीं बदलता। हरिदास ठाकुर ने कहा था कि यह शरीर के टुकड़े भी कर दो, लेकिन अपने मुख से कभी भी मैं कृष्ण का नाम नहीं छोड़ सकता। और भगवान ने क्या किया, उसके सारे जितने भी कोड़े मारे गए थे 22 बाजारों के अंदर जल्लादों के द्वारा, वो सब भगवान ने क्या किए थे, अपनी पीठ पर ले लिए थे, अपनी पीठ पर ले लिए भगवान। तो इसलिए भगवान की कृपा किसी को पिटवा करके कर रहे हैं, किसी को मार करके कर रहे हैं, जैसे क्या नाम है, पूतना को मार करके किया उसके ऊपर। तो आप समझ रहे हैं ना भगवान की कृपा कैसे हो रही है, अलग अलग हर प्रकार से भगवान की कृपा समझो। तो यहां पर जो है भगवान किसी से ले रहे हैं और किसी से किसी को दे रहे हैं, तो वास्तव में भगवान तो सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति का तारतम्य कितना है उसके अनुसार उनको कृपा का फल दे रही है। यदि भक्ति में प्रौण नहीं है, भक्ति में परिपक्व नहीं है, तो भगवान उससे क्या करते हैं, उसकी वस्तुओं को भी छीन लेते हैं। जैसे बलि महाराज से उसकी छीन लिया था। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रचेताओं को भगवान क्या कर रहे हैं, भोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्रचेता क्या है, भक्ति की प्रौण अवस्था को प्राप्त है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त है, इसलिए यहां बोलो जी भर करके दे रहे हैं। तो क्या क्या दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम भगवान ने क्या दिया उनको, क्योंकि प्रचेताओं की इच्छा थी किसके लिए, क्या नाम है, प्रजा सृष्टि के लिए, शादी करो, विवाह करो और बच्चे पैदा करो। तो इसलिए उनको पहले क्या दिया, एक सुंदर कन्या दी, जिसके लिए कई सारे विशेषण दिए गए थे, आप लोग सुने हुए थे, बरोहा का मतलब जिसका मुखारविंद कैसा है, बहुत ही बहुत सुंदर हो, सुमध्यमा, छीण कटी वाली, और तीसरा दिए थे, अपृथक धर्मशीला, अपने पति के अनुसार आचरण करने वाली, अपृथक धर्मशीला है, जो बिल्कुल पतियों के अनुरूप, पतियों के जैसे ही आचरण करने वाली थी। तो इस प्रकार भगवान ने सुंदर उनको पत्नी दे दी। अब पत्नी मिल गई, अब क्या होगा भाई, 4 दिन के अंदर जो है मालूम चला के राम नाम सत्य हो गई तब। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आयु प्रदान की, और कितनी आयु प्रदान की, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 1000, 10000 नहीं, कितनी दी थी, 1,000,000 वर्ष तक दी थी। कल्पना करो, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फार के देते हैं, इसको बोलते हैं छप्पड़ फार के देना, जितना चाहिए उतना भोग करो, लेकिन ठीक है आयु तो दे दी 1,000,000 वर्ष तक, जब शरीर में शक्ति नहीं होगी तब क्या होगा, मालूम चला जो है डॉक्टर के चक्कर लगाते रहे इतने सालों तक। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, इसको भी पूरा करा, इसलिए अहत तेजसा, उनको वो शक्ति प्रदान की, वो बल प्रदान किया जो बिल्कुल अहत नहीं होता हो, जो कभी बिल्कुल कम नहीं होता, नष्ट होना तो दूर रहा, जो बिल्कुल कम नहीं होता है, 10,000 व्रत बिल्कुल नूतन बने रहेंगे एकदम, 16 साल के नवयुग, अहत तेजसा भगवान ने, बताइए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कौन कहता है भगवान देते नहीं, प्रचेताओं के जैसे तुम लेते नहीं है? भाई लेने वाला पात्र भी तो चाहिए ना, भगवान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन पात्रता कितनी है, भगवान मतलब जी खोल करके दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं भाई, ठीक है सब हो गया लेकिन मनी राम नहीं, धन नहीं, तो फिर कैसे खर्च चलेगा इतना? तो इसलिए भगवान ने कल के श्लोक में बताया ना, भौमान भोक्षत भोगान वये दिव्यान, भौमान भोक्ष अथ अथ अतः अतएव तुम क्या करो, पृथ्वी के भोगों को भोगो जितना चाहिए जैसे, और भोगान वही दिव्यान स्वर्ग लोक के भोग भी हमने तुम्हारे लिए दिए, स्वर्ग लोकों के भोगों को भी भोगो तुम। अरे भाई तो इसको मांगना है किसी को तो फिर भगवान से मांगो ना, भगवान के लिए तो कोई किसी से जो है इसके लिए मांगने वाले के लिए कोई कम मीटिंग थोड़ी रखनी होगी, भाई रुको मेरे को डिस्कशन करना पड़ेगा मीटिंग में, कोई मीटिंग नहीं होना के लिए देना है फट दे देते हैं और लेना है फट ले लेते हैं। तो प्रचेताओं को जो है बहुत भोग दिए, लेकिन ये तो भगवान की कृपा हो गई, लेकिन इससे भी बढ़कर के और भगवान अब कृपा कर रहे हैं। क्या नहीं करते हैं? भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो अब क्या दे रहे हैं? तो अब इस श्लोक में दे रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे सबके लिए दोनों ही जरूरी हैं। तो क्या क्या जरूरी है तो बता रहे हैं, अथ मई अन पायन भक्त्या पक्क गुणाशया उपया सत मत धाव निर्वेद्य निरयात दह। अथ मई अन पाइना भक्त्या, मई अन पाइना भक्त्या, और क्या दे रहे हैं भगवान? उस भक्ति को प्रदान कर रहे हैं। जो भक्ति कैसी है? अन पाइना। इस संसार में देखा जाता है कि लोग भजन भी करते हैं लेकिन कुछ लालसाएं रहती हैं, है? जैसे कभी कभी देखा जाता है भजन के लिए आते हैं लेकिन अंदर, हालांकि यहां भी कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, घूमने की कमी नहीं, लेकिन यहां से भी भक्त लोग फिर कहां चले जाते हैं? फिर सीधे जो है टिकट करा के अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी भक्ति तो थी लेकिन अनपायना भक्ति नहीं है, विश्वास जिन अभिचल भक्ति नहीं है, दृढ़ भक्ति नहीं है, दृढ़ता उस भक्ति के नहीं है। लोग इस संसार के भोगों को कभी कभी त्याग कर देते हैं लेकिन स्वर्ग लोक के भोगों के में जब सुनते हैं तो वहां भटक जाते हैं, फिर उसको पार नहीं कर पाते। लेकिन भगवान प्रचेताओं को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हें क्या करेंगे भाई प्रचेता हो, ये थोड़ा पेपर गया थोड़ा ले, तो हम क्या करेंगे तुम्हें? ओ भक्ति प्रदान करेंगे जो कैसी है? अनपायना भक्ति। अनपायना का मतलब होता है बिल्कुल विचलित नहीं होगा, उसमें भोग रहेंगे लेकिन भोगों के प्रति आसक्त नहीं होंगे। जैसे ध्रुव महाराज को भोग दिए थे, बाद में तो उनकी इच्छा थी लेकिन बाद में जब उनको मतलब ध्रुव लोक तक दे दिया, अंत में ध्रुव महाराज पश्चाताप कर रहे हैं कि देखो हाय हाय धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, मैं जो है एक साधन से इन सीसाओं के टुकड़ों में ही हटक गया। तो जो है ध्रुव महाराज, उसके बाद में जो है जब भगवान के उनको दर्शन हुए तो उन्होंने कहा था कि वास्तव में मैं तो इस संसार में शीशे के टुकड़े ढूंढ रहा था लेकिन प्रभु जब आप मिल गए तो फिर और मेरे को फिर क्या चाहिए। प्रहलाद महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज ने कहा था कि प्रभु जो संसार के जीवात्मा जो कष्ट उठा रहे हैं आप क्या करो, सारे संसार के जीवात्माओं का कष्ट मेरे को दे और सबको क्या करो, इस संसार जो सबको जो है उद्धार कर दो, मैं अपने धाम में लेकर के चले जा। तो प्रहलाद महाराज, बहुत सारे अम्बरीश महाराज, रंतिदेव जो हैं आप सभी सुने होंगे, अपार संपत्ति सम्राट होकर के भी जो है सारी संपत्ति अपनी जो है प्रजा में लुटा दी, 49 दिन तक खुद जो है खाए पिए रहे, तो इसको बोलते हैं अनपायना भक्ति। लेकिन इतने पर भी उनका मन भगवान से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ।
श्रील प्रभुपाद जी जो हैं अविचल मतलब अनपायना भक्ति का वो देते हैं अविचल भक्ति। अविचल भक्ति का मतलब होता है कृष्ण के अलावा और कोई जिनकी कामना ना हो। अविचल मतलब जिनकी जिनका मन संसार के विषयों से या संसार की विकट परिस्थितियों से जो है विचलित नहीं होता है उसको बोलते हैं अविचल भक्ति। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और उस बंसी की आवाज को जब गोपियों ने सुना, हालांकि कोई रात्रि का समय नहीं था कि जो है कोई 11 12 बजे हैं सब सो गए हों, लगभग जैसे वर्णन मिलता है कि कोई जो है गौ को धो रही थी, कोई जो है खाना बना रही थी, कोई अपने पतियों को खिला रही थी, इसका मतलब है कि संध्या का समय है। सारे परिवार वाले उनके जो है अभी तक सोए नहीं है कोई भी, लेकिन जैसे ही गोपियों ने जब भगवान की उस बंसरी को सुना, निशम्य गीता अनंग वर्धनम, निशम्य गीता अनंग वर्धनम, उस गीता उस गीत को सुना अर्थात उस ध्वनि को सुना। किसकी ध्वनि को? बंसी की ध्वनि को, जो क्या करनी थी, कामदेव को बढ़ाने वाली थी। ब्रज स्त्रीय गृहित चेता, ब्रज स्त्रीय कृष्ण गृहित चेता, जिनके मन शुरू से किस में लगे हुए थे? भगवान श्री कृष्ण में लगे हुए थे। तो बंसी को बजा करके उन्होंने अपने परिवार की अपने स्वजनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं की, उनको छोड़ करके सीधे कहां पहुंच गए? भगवान श्री के पास में पहुंच गए। सब घर को छोड़ करके और एक घने जंगल में जा करके जहां भगवान विराजमान है, समयत्र कांत कलोल कुंडला सह यत्र कांत, जहां उनके पति देव अर्थात जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां पर सारी जो ब्रज गोपियां थी वो सभी पहुंच गए। तो इसको बोलते हैं अनपायना, अन 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 उपायना, अविचलित भक्ति। यहां से अपने स्वजनों की कोई चिंता नहीं की, वहां जो है ठाकुर जी उनको अब जो है डांट फटकार कर रहे हैं, प्रेम से डांट मारे, डांट मारो भी तो प्रेम से मारो, जैसे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अरे गोपियों अब तुमने जो है इस जंगल को देख लिया है तो ठीक है, अब अपने अपने घर को जाओ। इस जंगल में इतने सारे हिंसक पशु रहते हैं, कोई आक्रमण कर देगा तो क्या होगा? और फिर तुम्हारे सब पति हैं, वो हैं सब, उनकी जाकर के सेवा करो, तुम्हारा धर्म है पतियों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। तो भगवान जो है उनको पहले हतोत्साहित कर रहे हैं, पहले ऐसे मतलब उनकी जैसे कामना पर कोई कभी कभी जो है ऐसे बोल सकते हैं, जो कोई बहुत धन का लालची हो और किसी ने जो है वो किया हो, किसी ने जो क्या नाम है निमंत्रण दिया हो कि मैं तुम्हें धन दूंगा जितना चाहिए, और वहां जा करके बोल दे कि नहीं धन धन नहीं है। आपको एक सत्य घटना बताते हैं, लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में जब दिसंबर चल रहा था गीता जयंती का, तो सबको टारगेट दिया था, सब कंपटीशन मूड में थे कहां से जो है बुक्स जो है किया जाए। तो किसी का कॉल आया मेरे पास में कि प्रभु जी हम जो हैं 5 लाख रुपए देना चाहते हैं और फिर आप जी चाहे जहां उसको ठाकुर जी की सेवा में लगा देना। हमने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने ठाकुर जी को और 2-3 बार प्रणाम किया है प्रभु, ये तो बहुत सुख समाचार दिया है आपने। हमने बोला आप कहां से बोल रहे हैं? तो उसने बोला हम देहरादून से बोल रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है आप ऐसा करो हम आपको अकाउंट नंबर दे देते हैं आप उसमें डाल दो।
तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम जो है उसमें अकाउंट में इतना पैसा नहीं डाल सकते, हम वैसे आपको धन दे दें, हम आ जाइए आप हम आपको दे देंगे। अब हम भाई मतलब हम उसको जबरदस्ती नहीं किए, क्योंकि इस समय हमें तो लग रहा था कि 5 लाख की गड्डी हमें मिलने वाली है, तो इसलिए हमने जाकर हमने बोला ज़्यादा डीजल का 5,000 रुपये खर्च हो जाए, कहाँ 5 लाख में से 5,000 खर्च हो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने गाड़ी ली, सुबह ही मंगला आरती करके हम गाड़ी में बैठे और लगभग यहाँ से हम 5 बजे दर्शन करके लगभग 5 बजे करीब निकले और 2-2.5 बजे के करीब हम जो है कहाँ पहुँच गए थे, हम देहरादून पहुँच गए थे। कितना किलोमीटर है देहरादून यहाँ से? लगभग मेरा अंदाज है 400-500 किलोमीटर होगा। कितना है? 400 कम से कम होगा। तो हम जो है 2-2.5 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए। एकादशी का दिन था तो हमने कुछ खाया भी नहीं, चलो हमने सोचा कोई बात नहीं फास्टिंग हो जाएगी इस बहाने से चलेगा, कम से कम बाद में हम खाएंगे। अब हम वहाँ से कॉल किए, पहले तो हम जो है देहरादून पहुँचने से पहले ही हरिद्वार के पहले ही हम जो है उस न जा एक दो जगह से तो उन्होंने कहा हाँ आ जाइए मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ, फिर और हम जो है और आगे गए, फिर हमने बोला अभी कहाँ है बस वहाँ मिलेंगे, उन्होंने कहा बस स्टैंड के पास हम मिलेंगे। हमने बोला ठीक है, बड़े हम प्रसन्न हो रहे थे अंदर ही अंदर। जैसे फिर जो है हम लगभग उस देहरादून के पास में पहुंचे तो हमने बोला प्रभु आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा करो मेरे मोबाइल में से पैसा खर्च हो रहा है, आप कुछ पैसा डाल दो उसमें। अरे भाई मैंने कि जो 5,000 लाख देने वाला है वो बोलता है पैसा डाल दो, ये बिल्कुल सत्य घटना है। अब भाई अब इतना दूर आ गए, हमने बोला ठीक है हम डाल दें, तो 100 रुपये का हमने डाल दिया। फिर मैंने कॉल किया, मैंने प्रभु हमने डाल दिया 100 रुपये का डाल दिया, आप कहाँ हैं? अरे प्रभु मेरा मोबाइल बिल्कुल जो है अब स्विच ऑफ होने जा रहा है। और उसने क्या किया, जैसे ही वहाँ पहुँचे बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया, अब उठाए नहीं। हम बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन उसने अंत तक उठाया ही नहीं। तो ये बिल्कुल सत्य घटना, आप सोच सकते हैं मतलब। तो इसको बोलते हैं कभी कभी जो है एक बहुत जैसे कोई लालच हो, वहाँ जा कर के मालूम चले कि भाई वो है ही नहीं, तो उसके अंदर एकदम विचारों में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर जो है जो गोपियाँ जा रही हैं भगवान के पास में इच्छाओं को लेकर के, क्योंकि जानती हैं कि कृष्ण के पास में हमारी इच्छाएं पूर्ति होगी, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि हे गोपियों मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। लेकिन जैसे वहां पहुंचे तो उनको जो है क्या करने लगे, और डांटने डपकाने लगे। लेकिन गोपियों के मन में जरा भी भगवान की जो है वाणी का बिल्कुल भी जो है प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में जो है एक गोपी तो उनको बोलती है हे कृष्ण तुम ये मन समझो कि तुम्हारी बंसी को सुनकर के हम आकर्षित हुई हैं, एक मजाक में मतलब एक अलग अलग भाव हैं अपने जो है क्या नाम है उनके भाव अलग अलग हैं आचार्यों के। तो बोलती है कि कृष्ण तुम ये मन समझो कि तुम्हारी हम गोपी से आकर्षित होकर के आई हैं। तो कृष्ण ने कहा भाई तो क्यों आई हैं? तो गोपियों ने कहा इसलिए हम आई हैं क्योंकि तुम हमारा दर्शन करना चाहते थे, इसलिए हम तुम्हारे पास में आए हैं। अब तुमने हमारा दर्शन कर लिया है, अब हम जा रही हैं अपनी इच्छा से जा रही हैं, तुम्हारे कहने से थोड़े। ये मजाक मतलब भाव अलग अलग हैं। तो कहने का आशय है कि गोपियां जो हैं भगवान के प्रति इतनी आकर्षित कि उन्होंने जो है पूरा अपना समाज परिवार त्याग कर दिया। जब इसको त्याग करना सबके लिए असंभव चीज है। यज्ञ पत्नियां भी हम सुने थे कि यज्ञ पत्नियां जब ग्वालों ने कहा था कि देखो यहाँ कृष्ण बलराम गौचारण कर रहे हैं, तो यज्ञ पत्नियों ने सुना तो वो भी जो है उनके प्रति इतनी मतलब तन्मय हो गए कि श्रुत्वा अच्युतम उपायातम नित्य दर्शनो उत्सुका। पहले से ही वो भगवान के दर्शनों के लिए उत्सुक थी, और जैसे उन्होंने गोपों के मुख से सुना कि कृष्ण बलराम यहाँ गौचारण कर रहे हैं और वो कैसे हैं, भूखे हैं, कुछ खाना चाहते हैं, तो एताम कत क्षिप्तम मनसो बब्रहु जात संभ्रवा। तुरंत उन्होंने अपने पतियों की कोई चिंता नहीं की। निषिध्य मान पति भी भ्रात भी बंधु भी सुतई
अभिक सस्नु प्रिय सर्वा समुद्र एव निवग्ना, निषिद्धमान पति भी उन्होंने निषिद्ध कर दिया अपने पति के आदेश को, पतियों ने है? और उनका जो है क्या है भ्रात भी, भाइयों के आदेश, बंधुओं के आदेश, पुत्रों के आदेश, इन सभी को उन्होंने ठुकरा करके क्या की, इस प्रकार सारा सामान भर करके जो अभी भोग लगने वाला है, अभी यज्ञ के लिए ऑफरिंग होने वाला है, लेकिन उन सब की कोई परवाह किए बिना सारे सामान को भरा और क्या की, समुद्र एवं निमग्ना, जैसे नदियां समुद्र की तरफ दौड़ती हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पास में सबको छोड़ करके चले गए। तो इसको बोलते हैं अनपायना भक्तिया। तो ये भक्ति जो है जिसके पास में, तो भगवान बोलते हैं कि इस भक्ति को प्राप्त करेंगे, ठीक है, इस भक्ति से क्या होगा, तो इस भक्ति को प्राप्त करने से, इस प्रकार की दृढ़ता भक्ति में होने से क्या होता है कि उसके अंदर जो थोड़े हुए भी कसाय हैं, जो थोड़े बहुत भी उसके अंदर जो है हृदय में छुपे हुए सूक्ष्म रूप से जो वासना है, वो क्या होंगी, पक्क गुणाशया, संपूर्ण रूप से जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है, उसके अंदर जो सूक्ष्म रूप से, हालांकि भोगों के भोगने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं कि जैसे हींग की डब्बी में से हींग निकाल लो, लेकिन उसमें फिर क्या रहता है, हींग की डब्बी में फिर भी गंध रहती है उसमें, जब तक गंध भी नहीं खत्म होगी तब तक कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, हींग चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंध भी है, हो सकता है कि हम भोग नहीं भोग रहे हैं, लेकिन भोगों की सूक्ष्म वासना भी थोड़ी अंदर है तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो भगवान ये गारंटी दे रहे हैं, पक्व गुणाशय, गुण आशय, गुणों से उत्पन्न होने वाले, सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवग्धन्ति महाबाहो कर्म योगे न योगिना देह योगे न योगिना गुड। अरे आप इसका मतलब गीता पढ़ते हो, देह योगे न योगिना, तो सत्वम, जैसे सत्वगुण के कारण स्वर्ग आदि भोग प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्गीय भोग प्राप्त हो जाएंगे, रजोग के कारण जो है पृथ्वी के भोग मिलते हैं, और तमो के कारण जो है, तमोगुण के कारण किसके भोग मिलते हैं, नारकीय भोग मिलते हैं, लेकिन ये तीनों गुण निवग्धन्ते, सारे के सारे गुण जो है क्या होंगे, भगवान की भक्ति के कारण जल करके बिल क्या होंगे, बिल्कुल राख हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनावर्तनो अर्जुनः, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर के और पाताल पर्यंत, या पाताल से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी भोग हैं, भोग भोगो, एक स्थान के भोग भोगो, तो उससे क्या होगा, फिर दूसरे लोक के भोगों की कामना हो जाएगी। पृथ्वी के भोग समाप्त हुए तो इच्छा होती है कि स्वर्गीय भोग चाहिए, स्वर्गीय चाहिए, फिर जो है पारमेष्टि चाहिए, ब्रह्मलोक के भोग चाहिए, तो एक इच्छाएं बनी रहती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से, इसलिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, मा च यो अभ्यभिचारिण, इसको अभिविचारी भक्ति भी बोलते हैं, व्यभिचार न हो जिस भक्ति के अंदर, व्यभिचार का मतलब कोई भी कामना न हो, जैसे व्रतासुर बोलता है, क्या व्रतासुर का श्लोक है, नना कप्रेष्ठम न पा नना कप्रेष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुंभवं वा समुञ्जस सत्वं विरहीय कांचे। न नाक प्रेष्ठम, नाक प्रेष्ठ अर्थात स्वर्गीय भोग नहीं चाहिए, न पारमेष्ठम, पार न पारमेष्ठम अर्थात ब्रह्मलोक के भी सुख नहीं चाहिए, न सार्वभौम पृथ्वी के भी सुख नहीं, रसाधिपत्यम रसातल के भी सुख नहीं, न योग सिद्धि योग से मिलने वाली जो सिद्धियां वो भी नहीं, न अपुनर्भवम वा मुक्ति की भी कामना नहीं करता हूं, तो क्या चाहते हो भाई, क्यों भजन कर रहे हो, तो एक एक समुंजस त्वाम विरहीय कांचे, हे समस्त अवतारों के स्रोत, त्वाम विरहीय कांचे, आपके अलावा और मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार जो है
इसको बोलते। तो उससे क्या होगा, इस प्रकार की जब भक्ति बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जब कोई भजन करता है तो फिर क्या होगा, पक्व गुण आशय, उसके जितने भी कलमश हैं, रजस्तमः रजस्तमो भाव काम लोभ आदस्य न चेत एतिर्न विद्धि सत्वम इस्ते प्रसिद्धति। तो ये जो कलमस हैं गुणों से उत्पन्न वाले जो शरीर में काम क्रोध लोह आदि, वो सारे के सारे, थोड़ी भी वासना भी है कहीं कोने में भी, वो भी खत्म हो जाती है भगवान की भक्ति के इस प्रकार की भक्ति से। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, उप यासत मत धामम, फिर वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, जो भगवान का धाम जो सभी का लक्ष्य है। निर्विद्य निर्यात अतः, निर्विद्य निर्यात अतः, विरक्त होकर के संसार से फिर उपयासित है वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, जहां जाकर के फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर जो है उसकी कोई वापसी नहीं होती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं भगवत कृपा प्राप्त करना इस प्रकार की, तो हमें क्या करना होगा, ठीक से जो है श्रीमद् भागवत का श्रवण करो और भगवान के मन में अच्छी तरह से मन लगा करके भगवान के नाम का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार माम माम मेरे भगवान बोलते माम है, माँ क्या माँ अच्छा यो, माँ मतलब मेरी और किसी की नहीं, भगवान के और किसी साधन से भी नहीं, दो इसमें मतलब विशेषण है, कृष्ण के अलावा और किसी की चाह नहीं। जैसे राजा कुलशेखर बोलते हैं क्या है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंकज रांजय अध्ययव में विसत मानस राजन, आज ही मेरा मन क्या करे हे कृष्ण आपके चरण कमलों में जाकर के फंस जाए, पिंजड़े में जाकर के बंद हो जाए। तो कृष्ण त्वदीय है, कृष्ण त्वदीय आपके चरणों में कृष्ण बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं माम कृष्ण के अलावा, और न किसी जो है ज्ञान के द्वारा न योग के द्वारा, भगवान की अनपायना भक्ति के द्वारा ही पक्व गुणाशय सारे कलमस हमारे खत्म होते हैं और उपयस्यामि मत धामम, और मेरे धाम को प्राप्त करता है। किस प्रकार, निर्विद्य निर्यादतः, अर्थात इस संसार के समस्त भोगों से विरक्त होकर के और मेरे धाम को चला जाता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? बंसी की आवाज थी, बताओ। उस समय जो बंसी की आवाज थी, बंसी की खासियत है भगवान की बंसी जिस भगवान चाहेंगे उसी वही केवल सुनेगा, इसलिए मोस्टली जो है गोपियों ने भगवान की बंसी की आवाज सुनी प्राय लगभग, मतलब भगवान बंस गोपियों ने ही सुनी थी, गोपियों को ही भगवान ने नाम ले लेकर के पुकारा था, इसलिए गोपियों ने ही सुनी, भागवतम में ऐसा वर्णन है। और किसी ने सुनी थी? भागवत में तो ऐसे ही वर्णन, गोपियों ने सुना। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की